न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ, मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ, मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा धाम से एक दिन मैं नीचे आया, आकर के दो युग तक मैंने स्वर्णिम सुख पाया, स्वर्णिम सुख पाया, मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ, मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ।
ओम शांति। आज का टॉपिक है देहभान के संस्कार से वैराग्य। अभी गाना सुना ना, देह से न्यारा हूं बाबा का प्यारा हूं, तो बाबा का प्यारे बनने का आधार है देहभान से न्यारे रहना। और दूसरा सब अंदर था कि सत्ययुग से लेकर हम जब नीचे आए तब पूरे सुख का अनुभव करते थे। देहभान के संस्कार, संस्कार तो हमारे अविनाशी है ना, आत्मा अविनाशी है और संस्कार धारण आत्मा में होते हैं। देह विनाशी है, संस्कार अविनाशी है, परिवर्तन होते हैं। देह और आत्मा साथ साथ पाठ बजाते हैं ना, 84 जन्म का हमारा फेरा है। आत्मा और देह जब साथ साथ है तो कर्म तो होने ही है, और कर्म ही हमारे आत्मा पर संस्कारों के रूप में प्रभाव डालते हैं। तो सत्युग और त्रेता आधा कल्प हमारे संस्कार तो है ही हमारे साथ, लेकिन वो संस्कार हमारे सुखदाई है। दुख की फीलिंग क्या है पता भी नहीं चलता, लेकिन द्वापर और कलयुग ये दो युग वही आत्मा में संस्कार भी है, लेकिन वो संस्कार ही हमारे दुख का कारण बन जाते हैं। इसलिए हम द्वापर से भगवान को पुकारने लगते हैं। और तब आते हैं संगम युग में। संगम युग ही हमारा पूरा 84 जन्मों के संस्कारों का पुण्य का खाता जमा करने का समय है। तो देहभान के संस्कारों से वैराग्य लेना है। वैराग्य माना बाबा कहते हैं कि वैराग्य अर्थात इस देह रूपी घर से भी हम बेघर हो जाए। स्थूल में वैराग्य माना वो लोग घर छोड़ देते हैं, लेकिन हमारा वैराग्य कैसा है, किसी को दिखाने का नहीं है, हमें ही फील करना है कि हमें हमारे देह से भी वैराग्य है। तो देह के संस्कार, क्योंकि संस्कार कर्मेंद्रियों के साथ आत्मा और देह साथ मिलकर जब कर्म करते हैं तभी हमें संस्कार बनते हैं। आत्मा शरीर बगैर कुछ कर नहीं सकती, शरीर आत्मा के बगैर कुछ नहीं कर सकता है। तो देह और आत्मा दोनों का कंबाइंड स्वरूप में जब कर्म होता है तब हमारे संस्कार बनते हैं। तो वो संस्कार भी हमारे कभी दुखदायक बन जाते हैं जब हम देह भान में रहकर सब कुछ करते हैं। तो संस्कार तीन तरह के हैं हमारे, मैंने इसे तीन तरह के लिए हैं कि कर्मेंद्रिय है हमारी आत्मा की और शरीर के कर्मेंद्रियों द्वारा हम कर्म करते हैं। आत्मा की कर्मेंद्रियां तीन है, मन बुद्धि और संस्कार। तो जब हमारा कर्मेंद्रिय ऊपर पावर नहीं रहता है, कंट्रोल नहीं रहता है, तब हमारे जो कर्मेंद्रियों वश हम जो कर्म करते हैं वो कर्म हमारे हमारे लिए दुखदायक बन जाते हैं, या हमारे जो ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न रूप बनते हैं। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें बाप समान संपूर्ण बनना है, ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता और शिव बाबा समान बीज स्वरूप स्थिति का अनुभव करना है। लेकिन यह संस्कार हमारे है जो हमारे विघ्न रूप बनते हैं, हमारी मंजिल तक हमें पहुंचने में बाधा डालते हैं। तो सूक्ष्म मन की शक्तियां हैं, सूक्ष्म शक्तियां आत्मा की, सबसे पहला है मन। तो मन हमारी आत्मा की संकल्प शक्ति है, जो एक महान शक्ति गिना जाता है। लेकिन आज हम मन के अधीन हो गए हैं, मन हमारा गुलाम बन गया है। सत्युग प्रथा में हम मन के मालिक थे, आत्मिक भान में रहते थे तो हम देवता थे, लेकिन आज हम मन के गुलाम बन गए हैं। मन हमारी बात नहीं मानता है, जहां हम टिकाना चाहते हैं वहीं नहीं टिकता। समर्थ संकल्प का उपयोग आए, व्यर्थ संकल्प से हम कमजोर पड़ जाते हैं। तो ये हमारा व्यर्थ संकल्प करना हमारा संस्कार बन जाता है। कहते हैं मन जीते जगत जीत, लेकिन आज हम मन से ही हार जाते हैं, क्योंकि हमारी संकल्प शक्ति है वो कमजोर पड़ जाती है। तो इसको हम टर्न कर सकते हैं ना, उसके वैराग्य, क्योंकि संकल्प करना मन कभी छोड़ेगा नहीं, वैराग्य तो ले सकते नहीं उससे। लेकिन हमारे जो संस्कार है उसको हमें टर्न करना है, जो हमें हमारे देव स्वरूप का अनुभव कराए। तो हमारा मन के संकल्पों को हम समर्थ संकल्पों में परिवर्तन करें, वही हमारा वैराग्य गिना जाएगा संकल्प व्यर्थ संकल्पों से। फिर चिंतन, मन व्यर्थ संकल्प ही हमारा व्यर्थ चिंतन करता है, वही हमारी आत्मा की संकल्प शक्ति को कमजोर करता है। फिर है बुद्धि, बुद्धि है आत्मा की विवेक शक्ति है। मन जो सोचता है बुद्धि उसको समझती है, और सोच विचार कर कर्म करती है, वो हमारे संस्कार आत्मा पर प्रभाव डालते हैं। तो बुद्धि है आज एकाग्र नहीं है हमारी, वहां वहां भटकती है। बाबा कहते हैं बुद्धि को मुझ पर स्थिर करो, अपने को आत्मा समझकर मन मेरे में लगाओ। और बुद्धि का काटा जब तक स्थिर नहीं रहेगा तब तक हमारी शक्तियों पर भी इफेक्ट आएगा, परख शक्ति और निर्णय शक्ति, दो शक्ति आज कमजोर क्यों पड़ गई है? क्योंकि हमारी बुद्धि एकाग्र नहीं है एक बाप पर, बुद्धि यहां वहां भटकती है। तो वो संस्कार जो बुद्धि का भटकना है उसको हमें टर्न करना है, कि बाबा के स्वरूप पर हम बुद्धि को एकाग्र करें, तभी हमारी निर्णय शक्ति और परख शक्ति है वो हमारी मजबूत बनेगी, जो कि हमें बहुत जरूरत है। फिर संस्कार तो ऑटोमेटिक बन जाएंगे, मन बुद्धि अगर कमजोर होंगे तो संस्कार हमारे कैसे आएंगे, कमजोर पड़ेंगे। तो ये तीन सूक्ष्म शक्तियों का आज हम पर हमारा उस पर कंट्रोल नहीं है, इसलिए हम वहां संस्कार हमारे कमजोर पड़ जाते हैं। तो इस मन बुद्धि और मन बुद्धि को हमें पावरफुल बनाना है योग की शक्ति से। फिर आता है सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म स्थूल कर्मेंद्रिया। अगर सूक्ष्म कर्मेंद्रिया हमारे कंट्रोल में ही नहीं है तो स्थूल रहेगी नहीं रहेगी। तो शरीर की स्थूल कर्मेंद्रिया कौन सी है? आंख, कान, मुख, जीभ और नाक। तो सबसे पहले कर्मेंद्रिया दुख देने वाली कौन है? हमारी कर्मेंद्री आंख। बाबा कहते ना आते ही बाबा हमारा पहले क्या ऑपरेशन करते हैं? आंखों का, कि इन आंखों से आपको क्या देखना है और हम क्या देखते हैं। बाबा ने जो ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है बुद्धि, उसको बंद करके हम ये स्थूल नेत्रों से ही सब कुछ देखते हैं। दैहिक दृष्टि आंख से ही आती है ना, और जब आंख से ही दैहिक दृष्टि हुई, आत्मा को नहीं देखा, देह को देखा, तो संस्कारों पर तो इफेक्ट आएगा ही आएगा। तो आंखों का बाबा ने ऑपरेशन किया है, हमें सूक्ष्म सबके मस्तक में उसको टर्न हमें कैसे करना है? शरीर को नहीं देखना है, लेकिन शरीर को चलाने वाली देही, देह को चलाने वाली देही आत्मा को देखना है, सबके मस्तक में चमकती हुई मस्तक मणि को देखना है। तो वो हमें अभ्यास करना है ना। ब्रह्मा बाबा आज तक, अभी लास्ट वीक में मुरली में था ना, दीवार और पेंसिल, हर एक को बाबा ने लिख लिख के प्रैक्टिस किया है कि हर एक आत्मा है। तो हम तो हमें उन जैसा बनना है, तो उनकी कदम पर कदम रखना होगा, तो ही हम आंखों की दृष्टि बदल सकते। जैसी स्मृति वैसी दृष्टि, दृष्टि वैसी वृत्ति, वृत्ति ऐसी कृति। तो हमारे संस्कारों का आधार क्या है? बीज हमारा संकल्प, उसके बाद दृष्टि। तो आंखों का ऑपरेशन बाबा ने किया है, तो हमें हरेक के मस्तक में मस्तक मणि के रूप में आत्मा को देखना है। फिर आंख क्या करती है? परदर्शन, क्योंकि आत्मा को नहीं देखते तो शरीर को देखते हैं। फिर दूसरी आती है हमारा कान, कान, कान से हम क्या सुनते हैं आज? व्यर्थ बातें पर चिंतन सुनते हैं, किसी की व्यर्थ बातें सुनते हैं, निंदा सुनते हैं, और जब निंदा वो आता है कहाँ? हमारे यहां आ जाता है, यहां से निकलते नहीं है, अंदर जाता है और फिर हमारे मुख से निकलता है। तो बाबा ने क्या उसको टर्न कैसे करना है? सुनना तो है ही ना, हम कान बंद नहीं कर सकते। लेकिन बाबा ने मुरली में कहा था साकरवाणी में, कि बच्चे आपको मैं जो सुनाऊं वही सुनना है। तो बाबा का ही सुनना है, बाबा की ही बातें बोलनी है। तो इस कर्मेंद्रिय को कंट्रोल करना है कान पर, तो हमें हमें बाबा की ही बातें सुननी है। फिर आता है मुख, मुख आता है, मुख से हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं और क्या बोलना है और हम क्या बोलते हैं। राय का पहाड़ बनाते हैं वाणी द्वारा, किसी की बातें निंदा करते हैं, पर दर्श पर चिंतन मुख से ही करते हैं ना, किसी का माइंड तक नहीं रहता है, हमारे वाणी तक आ जाता है, पर चिंतन करते हैं, पर दर्शन करते हैं, सार का विस्तार कर देते हैं, राय का पहाड़ करते हैं, किसी की बात निंदा किसी को वर्णन करते हैं, कहते ना किसी की बातों का वर्णन करना भी वायुमंडल को खराब करना है। तो उसको हम टर्न कैसे करेंगे इस संस्कार को, तो बाबा ने कहा है ना साइलेंस की शक्ति को यूज करो, मौन में रहो। पहले यह कहते पांडव भवन में बाबा जब थे, शुरू शुरू में लोग एक एक महीने तक मौन का अभ्यास करते थे, एक एक महीने तक। आज हम एक घंटा भी कोई बोले तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मौन की शक्ति में बहुत ताकत होती है। मौन में अंतर्मुखी बनने का अभ्यास करना है, बाबा की ही बातें सुनानी है और सुननी है, ज्ञान युक्त बोलना है, सार युक्त बोलना है। हमारे अगर एक सर हिलाने से भी कोई बात कही जा सकती है, तब हमें बोलना नहीं है। बाबा ने इतने कहा 10 शब्दों का बोलना है, तो एक शब्द में अगर बोल सकते हो तो 10 शब्द का वर्णन नहीं करना है। इतना हमें हमारे वाणी पर कंट्रोल करना है। फिर आता है जीभ टेस्ट। बाबा कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार, सादा भोजन उच्च विचार, लेकिन आज हमारा भोजन पे क्या है। कोई भी बीमारी होगी, सपोज हमें कोई बीमारी होती है, लेकिन हमें पता चला कि आज तो पानी पूरी बनी है, पहुंच जाते हैं ना, तो इंद्रियों का रस, जब तक हम इंद्रियों के आकर्षण में हैं, तब तक हम उनके प्रभाव से न्यारे नहीं हो सकते हैं। तो ये हमारा चटपटा खाने का संस्कार जो है, उसको कैसे हम कन्वर्ट करें। बाबा ने कहा सात्विक खाओ और जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाओ, बाबा ने कहा है ना। तो ये हमारे संस्कार है, उसको परिवर्तन हमें ही करना है। फिर आता है ये कर्मेंद्रिय की स्थूल और सूक्ष्म। उसके बाद आता है आत्मा के ओरिजिनल जो संस्कार है या गुण है, आत्मा के मूल सत्वगुणी आत्मा कहते हैं ना, कि जब आत्मा परम धाम में थी तब सत्वगुणी सातों गुणों से संपन्न थी, संपूर्ण अवस्था में थी, लेकिन उस आत्मा परम धाम से आती है पाठ बजाने सत्युक्त आत्मा पाठ बजाती है तब तो हम ठीक थे, लेकिन द्वापर से जब आत्मा आती है नीचे पाठ बजाने तब उसमें क्या आता है, देहभान। देहभान जो सात हमारे गुण थे, सूक्ष्म ज्ञान पवित्रता प्रेम शांति सुख आनंद और शक्ति, ये हमारे सात गुण थे। इस सातों गुणों की स्मृति बस जो आत्मा कर्म करती थी वो हमारे श्रेष्ठ संस्कार बन जाते थे, लेकिन द्वापर से जब आत्मा ही आधा कल्प पाठ बजाते बजाते पुरानी होती गई, तो आत्मा में भी द्वापर से खाद पड़नी शुरू हो गई। जो सात हमारे गुण थे वो हमारे सात अवगुण में परिवर्तन हो गए। मुख्य थे 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अलस्य अलबेलापन राग द्वेष ईर्ष्या, बाकी तोर कहीं जा रहे हैं बाल बच्चे उसके। लेकिन सात गुणों की संपन्न जब आत्मा थी, उस स्मृति स्वरूप में स्थित रहकर जो आत्मा कर्म करती थी वो हमारे देवी संस्कार थे, जो हमारे सुख का कारण थे। लेकिन आज द्वापर से कलयुग अंत तक आत्मा ने जो द्वेभानवश कर्म किया, वो कर्म ही हमारे संस्कार बने और वही हमारे दुख के कारण बन गए। तो इस स्वरूप की स्मृति से विस्मृत होकर जब हम कर्म करते हैं तो हमारे वही कर्म हमारे दुख का कारण बन जाते हैं, हमारी दुर्गति का कारण बन जाते हैं। तो उसमें भी जो सात गुण हमारे थे, शांत स्वरूप सुख स्वरूप, उस स्वरूप से विस्मृत होकर जब हम कुछ कर्म करते हैं तो हमें वो दुख देते हैं। तो सबसे पहला है शांत स्वरूप, हम थे ना आत्मा, तो उसके स्वरूप में स्थित नहीं होते हैं तब हम, हमारी क्या होती है स्थिति, हम हलचल में होते हैं या अशांत होते हैं या परेशान हो जाते हैं, हो जाते हैं ना। छोटी सी बात होती है, किसी ने वो कह दी हमारी काम की नहीं हुई, तो हमें लग जाती है, हमारा मन हलचल में आ जाता है। तो कि हमारे शांत स्वरूप की हम स्मृति से भूल गए, विस्मृत हो गए। आत्मा स्वधर्म से जब दूर हो जाती है, स्वस्वरूप से जब दूर हो जाती है, तब वही उसका गुण है, वो उसको दुख देने लगता है। तो उसके हम टेस्ट, इस स्वरूप, इस शांत स्वरूप के स्मृति के अधीन होकर हम जब कर्म करते हैं उसको हम टर्न कैसे करें। तो हम हम हमारी बाबा ने कई सारी स्मृतियां दी है ना कि परेशान नहीं होना है, अपनी शान में रहेंगे तो हम कभी परेशान नहीं होते, लेकिन हम अपनी शान को भूल जाते हैं कि हम शांत स्वरूप हैं। अंतर्मुखी बनकर एकांत में रहने का अभ्यास करें, शालिनी की शक्ति अनुभव करें। बाबा के जो कहते हैं ना शांति का सागर है, उससे हम किरणें ले, शांति की किरणें ले। फिर होता है सुख स्वरूप। कई बार हम अपने ही स्वभाव संस्कारों के वश दुखी बन जाते, कोई छोटी सी बात कह देता है, कुछ कह देता है, तो हम दुख ले लेते। बाकी न दुख दो न दुख लो, पर हम हमारे मन वचन कर्म से अटेंशन रखें कि हमारे मन वचन कर्म से कभी किसी को कोई भी दुख न मिले। हम किसी को दुख सुख नहीं दे, लेकिन ऐसा तो हो कि हम किसी को दुख भी नहीं दे। चलो सुख नहीं दे सकते, लेकिन कभी किसी को दुख भी नहीं दे। तो हमारा सुख स्वरूप है, हमें सबको सुख देना है। तो बाबा ने ऐसे कई बातें हमें बताई है कि जिससे हम सबको सुख दे। फिर है प्रेम। प्रेम स्वरूप की जब विस्मृति कर देते हैं, तब हम किसी को घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, तो हमारा ये स्वरूप है प्रेम स्वरूप। बाबा कहते हैं ना, उसको हम कैसे टर्न करें, किसी के घृणा है, नफरत है, उसको हम टर्न कैसे करें? तो हम सभी को एक, बाबा कहते हैं ना, विश्व एक परिवार है। सभी ऐसा समझो कि पूरा एक विश्व परिवार है। मेरे सामने जो भी आत्मा है वो देवकुल की आत्मा है, मेरे ही भाई बहन है। अब जब ऐसी ऊंची दृष्टि रखेंगे सबके प्रति, तो ही हमारे मन में किसी के प्रति घृणा भाव होगा, नफरत होगी, तो हम उसको बदल सकते हैं प्रेम में, आत्मिक प्रेम में, वो भी आत्मिक स्नेह में बदलना है, आत्मिक प्रेम में। फिर है हमारा स्वरूप शक्ति स्वरूप। जब हम शक्ति स्वरूप को भूल जाते हैं कि हम शक्ति स्वरूप है, तो हमें भय लगता है या हमें डर लगता है, निर्बलता का अनुभव होता है, कमजोरी का अनुभव होता है। भय भी हमें कब लगता है? जब हम कोई हमारी गलती को छुपाते हैं या झूठ बोलते, क्योंकि भी बार बार झूठ बोलने का संस्कार भी हमारा हमें तकलीफ देता है ना, क्योंकि हमारा कोई विश्वास नहीं करता है। कभी बार हम सच भी बोले, कहते शेर आया शेर, वो कहानी सुनी है ना कि जब सचमुच शेर आ गया तो उसकी बात किसी ने नहीं मानी और वो शेर का शिकार खुद हो गया। तो हम भय हमें कब रहता है कि जब हम कुछ ना कुछ गलती हमारी की गई, बाबा की श्रीमत के अनुसार नहीं चलते, कुछ हमने बड़ी गलती की है और छुपाई है, झूठ बोलते हैं, तब हमें भय रहता है। लेकिन हमें याद रखना है कि हम सच्चे बाप के सच्चे बच्चे हैं। शक्ति है, तब हम कौन से सम्मान का यूज करते हैं कि मास्टर सर्व शक्तिवान है, स्वयं भगवान हमारा साथी है, हम उनकी संतान है, शिव शक्ति कंबाइंड है। तो अब माया भी शेर बन के आएगी तो भी हम उसको परास्त कर सकते हैं, लेकिन हम बाबा की छत्र छाया में रहकर उनका अनुभव करें तो। फिर है हमारा पवित्र स्वरूप। लेकिन पवित्र स्वरूप हम भूल जाते हैं, तब हम छोटी मोटी कई अपवित्रता के शिकार बन जाता है। बाबा कहते काम विकार भी अपवित्रता है ना, लेकिन वो तो बड़े रूप में तो हम उसको छोड़ देते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म रूप है पवित्रता का, बाबा कहते शुद्ध विचारों में भी अगर संकल्प में भी इधर भी अशुद्धि आई तो वो भी अपवित्रता है। हमारी व्यर्थ से किसी आत्मा का व्यर्थ संकल्प चलना, वो भी अपवित्रता है। तो हमें अपने पर कितना अटेंशन देना होगा। हमारी चाल चलन से भी किसी को संकल्प चले व्यर्थ, तो भी वो हमारी अपवित्रता में गिना जाता है। तो कितनी महीन चेकिंग हमें करना होगा इस अपवित्रता के संस्कार को मिटाने के लिए। व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सोचना, नेगेटिव सोचना, वो भी अपवित्रता है। सूक्ष्म चेकिंग करनी होगी हमें। फिर आता है आनंद और खुशी। ये हमारा हम जब स्वरूप भूल जाते हैं, तब कोई छोटी सी बात में हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, तो इससे हम दूर कैसे रहे, इसको टर्न खुशी में कैसे करें? तो बाबा कहते हैं ना कि ब्राह्मण जीवन का स्वास क्या है, खुशी है। और सबसे बड़ा कारण है जो हम उदास हो जाते हैं या निराश हो जाते हैं, वो कहे कि छोटी छोटी श्रीमत का हम अवज्ञा करते हैं, तब हमारी खुशी गुम हो जाती है, गायब हो जाती है, नाराज हम निराश हो जाते हैं। तो बाबा कहते खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसी कोई टोली नहीं है। खुशी खुश रहो और खुशी बांटो। हम हमारा जो खुशी का स्वरूप है आनंद, परम आनंद है ना, सच्चित आनंद स्वरूप बाबा कहते हैं ना, वो स्वरूप को याद करो कि हमें कौन मिला है। हम बाबा को इतना, कोई बार अपने भाग्य की महिमा कहते, लेकिन कभी इतना भूल जाते कि हमें कौन मिला है, हम भूल जाते हैं किसने हमें अपना बनाया है। तो बाबा ने जो दिया है हम उसको भूल जाते, लेकिन बाबा हमारे पास जो नहीं है उसकी वजह से हम खुश की जगह नाखुश हो जाते हैं, क्यों क्या में चले जाते हैं, व्यर्थ में चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं प्रश्नों से पार रहोगे, क्यों क्या के की भाषा करते हैं ना हम, तभी हम व्यर्थ में चल जाते हैं, उदास हो जाते हैं। लेकिन ये के की भाषा से हम दूर रहेंगे, प्रश्नों से पार रहेंगे, तभी हम प्रसन्न चित्त रहेंगे। और यही हमारे पास क्या है, वो उसका रूहानी खजाना है, उसका नशा होना चाहिए। जब नशे में रहेंगे तो वो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है हमारा। और हम जब हमारे जो भी फिक्र है, बोझ है, बाबा को दे दो। बाबा कहते हैं अपने सारे बोझ मुझे दे दो, लेकिन देने के बाद भी हम अपने सर पर लेकर घूमते हैं, इसलिए हम खुश नहीं रहते, उदास रह जाते हैं। बाबा कहते हैं रूहानी फकुर में रहो, जब फिक्र बाबा को दे देंगे तो हम बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। तो हमारा वो समय याद है कि हम बेगम के बादशाह हैं, हम बेफिक्र बादशाह हैं। तो बाबा की स्मृति ही कैसी, बाबा ने कैसी हमें स्मृतियां दी है, जो हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं, एक छोटे छोटे हम सम्मान याद रखे तो भी हम हमारी जो संस्कार है उसका निर्माण कर सकते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी स्मृतियां ही हम विस्मृत कर देते हैं। फिर है क्रोध। क्रोध का रॉयल रूप कौन सा है? चलो हम एकदम तो क्रोध नहीं करते कि चलो किसी को, लेकिन क्रोध के वश भी हम क्या करते हैं, क्रोध के अधीन होकर हम क्या कर देते हैं, जो हमारे बुरे संस्कार बन जाते हैं, आंख दिखाते हैं, आवेश में आ जाते, जोश में आ जाते, चिड़चिड़ापन। सबसे सामान्य स्वरूप है क्रोध का, चलो गुस्सा नहीं करेंगे, चिड़ जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, जोश में आ जाएंगे, रोब करेंगे। किसे हम क्रोध नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं बनता है, हो जाता है ना ऐसा, जिद करना, हठ करना, ये क्रोध का ही तो रूप है ना। किसे क्रोध के बगैर तो हम कोई हमारी सुनेगा ही नहीं। लेकिन तब हम इस क्रोध के रूप को कैसे टर्न करें कि हम कौन है, शीतला देवी। बाबा के नाम शीतला देवी हो, यहां बर्फ रखो, मैं शांत स्वरूप हूं, शीतला देवी हूं। नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी चौक हमारा रिमोट किसी और के हाथ में हमने दे दिया होता है कि कोई हमें कुछ कहेगा तो हमारी खुशी गायब हो जाएगी, कोई हमें कुछ कह देगा तो हम नाराज हो जाएंगे, कोई हमें कुछ कह देगा तो हम उदास हो जाएंगे, कोई हमें कुछ कह देगा तो हम रूठ जाएंगे। रूठना रूसना भी क्रोध का अंश है ना। तो हमारी खुशी का या हमारी स्थिति का रिमोट हम किसी और के हाथ में दे देते हैं, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं ना कि हर एक का अपना अपना पार्ट है, हर एक का अपना अपना रोल है, हम किसी का पार्ट नहीं बदल सकते, बेटर है कि हम ही बदल जाए, लेकिन हम किसी और को बदलने में ही लगे हुए हैं। रिमोट हमारे पास रखे बाबा, सबसे बड़ा रिमोट है हमारा, हमारी स्थिति को बदलने का, लेकिन हमने किसी देहधारी को आधार बना दिया है हमारी स्थिति के लिए, हमारी पुरुषार्थ के लिए। तो नाराज हो जाते हैं, वो भी एक क्रोध का अंश है। तो बाबा कहते हैं बाबा कितना देखो, शब्दों का बाबा तोलमेल कितना देते हैं, तालमेल कि ड्रामा के रास को जानने वाला कभी नाराज नहीं होता है, वो हमेशा राजी रहता है। तो खुशी और नाराज नहीं होना दोनों में एक बात कहते हैं, ड्रामा के रास को जानेंगे तो हम कभी नाराज नहीं होंगे, लेकिन ड्रामा तो हम साथ में छोड़ देते हैं ना, तब तो व्यक्ति सामने आ जाता है, परिस्थिति सामने आ जाती है। तो एक अब रिस्क करते हैं ना हम, कोई बार कह दे तो अभी मैं नहीं करूंगी। सेवा में भी कोई बार होता है ना कि चलो हमें मनचाही सेवा नहीं मिलती है, जो हमें नहीं पसंद वही सेवा आ गई, तो रूठ जाते हैं, रिस्क कर देते कि अभी ये मैं सेवा ही नहीं करनी है। तो बाबा कहते हैं रिस्क नहीं करनी है, वो हमारा संस्कार है, वो शूद्र का संस्कार है, रिस्क नहीं। लेकिन बाबा कहते रेस करो, रिस्क को रेस में परिवर्तन करो। देखो जो भी है हम उसको छोड़ना चाहते लेकिन उसको टर्न नहीं करते हैं, हमें टर्न कर देना है। जो ही हमारे संस्कार दुखदायी है उसको टर्न कर दो, जो हमें सुखदायी बना दे, हम उसी संस्कार को या उसी कमी कमजोरी को हम गुण में या विशेषता में बदल दे, टर्न कर दे। तो हम रेस करें, पुरुषार्थ में रेस करें, किसी से किसी की तुलना नहीं करें हम हमारी। हम तुलना भी करने लगते हैं ना, तुलना करते उससे आगे हम, मैं उसके जितना मैं कैसा नहीं, उसके जैसा मुझे क्यों नहीं मिला है, उसके जैसा क्यों नहीं मिला है, तुलना कर देते हैं, वो देहभान का बस। तो जब आत्मा इन सातों गुणों के अधीन होकर जब विस्मृत हो जाती है, सात अवगुण या सात कमी कमजोरी के अधीन होकर जब हम कर्म करने लगते हैं तो वो हमारे बुरे संस्कार बन जाते हैं, जो हमारे पुरुषार्थ के मार्ग में हमें आगे नहीं बढ़ने देते, हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में एक बहुत बड़ा विघ्न बनते हैं। तो ये हमारे सात गुण ही हम सात अवगुण में परिवर्तन कर देते हैं। और दूसरा है सात पांच मुख्य विकार, और उसके बाद है आलस्य अलबेलापन, वो भी हमारे संस्कार है ना कि चलो आज नहीं, देखो मुझे ही होमवर्क मिला था, कल तक मैंने उस पर तीन जन तोड़ से मेहनत नहीं की, चार दिन रखा चलो संडेत कर दूंगी। अलसेल ब्लैक बोर्ड का संस्कार है ना, वो भी हमारे कई बार हमें चलो कल लाइट नहीं होती, कल मोबाइल नहीं चलता, कल मेरी तबीयत बिगड़ जाती तो मैं क्या कर लेती थी। सात दिन से होमवर्क मिला था लेकिन मैंने संडे तक छोड़ा था कि संडे मैं पूरा फ्री रहूंगी तो आराम से कर लूंगी। तो वो संस्कार बार बार जो बार बार हम करते हैं वो हमारी आदत बन जाती है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो संस्कार रिकॉर्ड हो जाते हैं और वही बचते रहते हैं बार बार, मन बुद्धि उसी अनुसार चलने लगते हैं। तो आलस्य अलबेलेपन के संस्कार है, कर ही लेंगे वो हो जाएगा, हमें तो करना है, मेरे सिवा तो कोई नहीं करेगा तो मुझे ही तो करना है, ये हमारी सोच है वो हमारे आलस्य अलबेलेपन को पक्का करती है। उसके जगह हम अलर्ट रहे, बाबा कहते हैं अचानक का पाठ सदा पक्का रखो। क्योंकि चंद्रमणि दादी जब शरीर छोड़ा था तो किसी को कुछ नहीं पता था, बीमार भी नहीं थी, बेंगलोर में थे, अचानक शरीर छोड़ दिया, तभी बाबा ने अचानक के पाठ को पक्का करने का अभ्यास करने को कहा। एवर रेडी रहो क्योंकि शरीर का भी भरोसा नहीं है ना, कब शरीर चला जाए और पुरुषार्थ हमारा नहीं हुआ तो क्या होगा, कैसी स्टेज मिलेगी हमें सतयुग में। तो अलबेलेपन अलस्यपन से छूटना है तो अचानक एवर रेडी का पाठ पक्का करना होगा और अलर्ट रहना है, बहुत काल का अभ्यास हर एक चीज में। और फिर है ईर्ष्या नफरत। ईर्ष्या बाबा ईर्ष्या को भी अग्नि कहते हैं, कहते हैं ना ये जैसे काम अग्नि है, क्रोध अग्नि, और किसी को अग्नि नहीं बोला है, काम अग्नि है, क्रोध अग्नि है, ईर्ष्या भी अग्नि, क्योंकि हम जला देती है, सब कुछ नष्ट कर देती है हमारा जो भी अच्छा ही बुरा है वो। तो ईर्ष्या को भी हमें जलाना है। ईर्ष्या कैसे आती है हमारी तुलना में, हम जब हमारी कंपेरिजन करते हैं, कोई हमसे आगे बढ़ जाता है, किसी को हम एक जैसी विशेषता है लेकिन किसी को चांस मिल जाता है, उस वो हमारे हमसे आगे कैसे बढ़ गई, तो वे तुलना नहीं करें हम अपने को, क्योंकि बाबा का हर एक बच्चा, बाबा कहते हैं मेरा हर एक बच्चा विशेष बच्चा है, अपने आप को बाबा की नजरों में हमें बनाना है ना, लेकिन हम अपने अंदर अंदर एक दूसरे की नजर में ऊंचा उठाने को लगे हैं, लेकिन हम ये भूल जाते कि बाबा प्रभु पसंद बनना है, लोक पसंद बाद में बनना है, लेकिन हमारी इच्छा क्या रहती है कि हम ब्राह्मण परिवार में लोकप्रिय बने, लेकिन प्रभु के प्रिय बनना तो हमारा बाद में आ जाता है, लेकिन लक्ष्य हम ये रखें कि हमें प्रभु का प्रिय बनना है, प्रभु का दिल तक नशीन बनना है। हम कई ऐसा सोच के दिल सिकत बन जाते हैं ना कि चलो हमें कुछ कोई सफलता नहीं मिलती है कोई सेवा में, या कोई हमने टारगेट लिया है उसमें सफलता नहीं मिलती है तो हम दिल सिकस्त बन जाते हैं, वो बार वो चीज छोड़ देते कि अभी हमने करना है हमसे नहीं होगा, लेकिन बाबा कहते दिल सिकस्त नहीं बनो, हम ये भूल जाते कि हम परमात्मा के दिल तक नशीन आत्मा है, तो इतना बड़ा नशा हम साथ में लेकर चले गए तो हमसे कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन हम जो बाबा नशा दिलाने वाले पॉइंट्स है ना, हमें आगे बढ़ाने वाले पॉइंट्स, उसको याद नहीं रखते हैं। तो बाबा ने हर एक चीज का तोड़ दिया है, हर एक कमी कमजोरी का भी तोड़ दिया कि आप इससे कैसे निकलो, और छोटी छोटी बातें दी है ऐसे ही कि नहीं, बड़ा बड़ा दिया है कि आप बड़ा बड़े बातें बड़े बड़ी चीजें करो उससे छूटने के लिए, बहुत छोटी सी बात बाबा कहते हैं लेकिन हम उसको ही विस्मृत कर देते हैं। तो ये संस्कार जो हमारे हैं कर्मेंद्रियों के वश होकर हम जो करते हैं, सातों गुणों की विस्मृति से स्थित होकर या स्वधर्म से स्थित होकर परधर्म में स्थित होकर जो हम कर्म करते हैं वो हमारे देहभान के संस्कार बन जाते हैं। देहभान सबसे बड़ा है, वो भी रह गया देहभान, क्योंकि आधा कल्प आत्मा सबसे समीप किसके साथ रही है, देह के साथ, तो वो आत्मा और देह का संबंध बहुत नजदीक का बन गया है, तो आत्मा हम अपने आप को देह ही माने लगे, आत्मा की स्मृति हो गई है, और देह अहंकार ही हमारे पतन की जड़ है, क्योंकि देह अहंकार सबसे पहले आता है तो हम क्या आते हैं, मैं और मेरापन, मैं ही सब कुछ करती हूँ, मैं सेवा कोई करेगा नहीं, ये सेवा तो मुझसे ही होगी, मेरी विशेषता है, और मेरा 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 सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मेरा परिवार, तो ये मैं और मेरा यही हमारा तेरा बनने से दूर करता है। बाबा कहते हैं मैं जितनी बार, क्योंकि मैं और मेरा दिन में हम कितनी बार बोलते हैं ना, बार बार मैं और मेरा, तो इसको कन्वर्ट करो, कैसे टर्न करो मैं को, मैं एक आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, और मेरा को मेरा बाबा, ये इतनी सहज चीज बाबा बता देते, लेकिन हम इतना सहज भी अभ्यास नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतना हम देह भान के वश हो गए हैं। तो मैं और मेरा को, मेरे मैं आत्मा और मेरा बाबा, उसमें टर्न करना है, और तेरा तेरा बाबा, गुरु नानक ने तेरा तेरा करके तेरा हो गया, तो इतनी सहज बात बाबा बताते हैं। फिर मैं और मेरेपन से क्या आता है, नाम मान शान की इच्छा, नाम मान शान, कि मेरा नाम हो, मेरा सब सुने, मेरे क्लासेस सब सुने, मेरी यज्ञ में नाम ना हो महिमा हो, ऐसी हमें हो गई है। लेकिन नाम की कामना नहीं रखना, बाबा कहते नाम को, बाबा का नाम प्रत्यक्ष करना है, इसमें टर्न करो कि हम हमारा नाम नहीं करते, बाबा को प्रत्यक्ष करना है संसार में। बाबा ने तो हमको प्रत्यक्ष कर दिया बच्चों को, ब्रह्मा कुमारियों को, लेकिन हमको बाबा को प्रत्यक्ष करना है और मान चाहिए हमको कि चलो मैं वीआईपी से, मुझे वीआईपी जैसी पालना मिले, वीआईपी जैसा मान मिले, मैंने सेवा की अच्छी है तो बा टीचर बहन मेरा सबके सामने नाम ले, ऐसी मान की इच्छा होती है ना हमको। लेकिन बाबा के तो इस मान से क्या, ये तो अलग काल का मान है ना, शरीर जाएगा मान भी चला जाएगा। लेकिन मान क्या, अपने श्रेष्ठ बाबा ने जो हमें मान दिया है, बाबा ने अपने गले का हार बनाया है वो भूल गए हम, बाबा ने हमने अपने नैनों का नूर बनाया है, दिल तख्त नशीन तो सबसे श्रेष्ठ तख्त है, उस तख्त के हम मालिक बनाया है बाबा, वो हम भूल जाते हैं। लेकिन ये नाम कल पल के नाम के पीछे, मान के पीछे पड़ गए हैं। तो बाबा कहते हैं वो याद रखो ना कि मेरे गले का हार हो, मेरे नैनों का नूर हो। बाबा हमें कंधे पर बिठाते हैं ना, सिर पर भी बिठाते हैं, लेकिन वो हम भूल जाते हैं। तो ये हम याद रखें कि बाप में अपने, देखो स्मृति है छोटी छोटी ही, हमें हमारे पुराने संस्कार, ये जो हम संस्कार है जो हमें दुखदायी, उसको हम टर्न कर सकते हैं, छोटी छोटी स्मृतियां है लेकिन वही हमें पावरफुल बनाती है। फिर शान, बाबा कहते हैं शान में जो शान की इच्छा रखेंगे वो सतयुग में शान को नहीं पा सकेंगे, लेकिन हम ईश्वरीय शान में रहे ना, कि हम ईश्वर के बच्चे हैं, ईश्वरीय परिवार के बच्चे हैं, तो हम वो शान में रहेंगे तो हमें ये हद की शान की कुछ इच्छा नहीं रहेगी। लेकिन हम हद का नाम मान शान इतना हमें चाहिए 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 बोलते हैं ना, चाहिए चाहिए में परेशान हो जाते हैं, तो जो हम ईश्वरीय शान में रहेंगे तो कभी परेशान नहीं होंगे। तो ये नाम मान शान की इच्छा भी हमें देहभान की वजह से आती है। तो ये मुख्य थे हमारे, जो हम गमेंद्रियों के अधीन होकर संस्कार के वश हो जाते हैं, फिर देहभान के वश मीन्स सातों गुणों की स्मृति से विस्मृत हो जाते हैं, तब भी हम हमारे संस्कार के वश हो जाते हैं। लेकिन हमारे पुराने संस्कार है आदि अनादि काल के संस्कार, मध्य के संस्कार है वो ही हमारे देहभान के संस्कार, ये जब अंतिम जन्म है ब्राह्मण जन्म, यही हमारे श्रेष्ठ संस्कारों को जमा करने का समय है। तो ये संस्कार तो हमारे, जब तक आत्मा और शरीर है संस्कार तो साथ साथ रहेंगे, लेकिन हम ये संस्कारों से वैराग्य कैसे लाए, माने छोड़ना तो नहीं है ना, छोड़ना नहीं लेकिन उसको टर्न करना है। तो कब करेंगे और कैसे करेंगे, और टर्न भी करना क्यों है, क्योंकि ये हमारो ये लक्ष्य से हमें विचलित करते हैं, हमारे लक्ष्य में बाधा डालते हैं। तो इन संस्कारों को हम टर्न कैसे करेंगे, तो उसका आधार क्या है, जब तक पहले हमें क्या करना होगा, हमें पता है ये हमारे संस्कार हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं, लेकिन उन वो संस्कार भी हमारे हैं, उसकी सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो हमें महसूस होना चाहिए कि ये हमारी कमी है, कमजोरी है, हमारे बुरे संस्कार है। सबसे पहले हमें महसूस होना चाहिए ना, महसूसता ही नहीं हो तो हम परिवर्तन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारे अंदर महसूसता की शक्ति होगी तो ही हम महसूस कर पाएंगे कि ये हमारे संस्कार है वो जो आत्मा को लक्ष्य से दूर ले जाते हैं। तो पहले हमें महसूस करना है कि ये हमारे संस्कार है, उसको महसूस करने के बाद ही हम उसको टर्न करेंगे ना, कि यह परिवर्तन करना है, क्योंकि महसूस किया कि ये क्रोध का संस्कार है, उसको मुझे, वो मुझे परेशान करता है, मुझे एकाग्र होने नहीं देता है योग में। तो क्रोध को हमें कैसे टर्न करना है, उसके लिए बहुत सारी सहनशीलता की शक्ति चाहिए। कहते हैं सहन करते हैं तो हम कितना भी सहन करो क्रोध नहीं आएगा, सहनशीलता की शक्ति, परिवर्तन किया ना तो उस क्रोध को महसूस करे कि हम ये हमें दुख देता है या हमारे परिवर्तन में बाधा डालता है, तो महसूस की ताकि शक्ति चाहिए, तभी हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो परिवर्तन कैसे करेंगे, तो पहले हम समय के महत्व को जाने कि कौन सा समय चल रहा है अभी और कितना बाकी रहा है, संगम युग के महत्व को जाने हम कि समय, संगम युग समय है बहुत फास्ट जा रहा है, समय के साथ हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। बाबा कहते हैं अभी तो चढ़ते दौड़ने का भी समय नहीं, अभी उड़ने का है, हाई जंप देने का समय, उड़ने का समय, अभी तो हम चल ही रहे हैं। तो समय को पहचानना है, समय के महत्व को पहचानना है, संगम युग के महत्व को जानना है, क्योंकि संगम युग में ही बाबा कहते हैं तुम कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनते हो। तो हमारा लक्ष्य क्या है, हीरा बनना है ना, सतयुगी देवी संस्कार धारण करना है इसी समय पे। तो संगम युग के महत्व को जानना है, समय के महत्व को जानना है। फिर है हमारी श्रेष्ठ स्मृति, आदि अनादि संस्कारों की स्मृति जब तक हमें रहेगी तभी हम अपने आप को परिवर्तन कर पाएंगे कि हम क्या थे, आदि स्वरूप हमारा क्या था, अनादि स्वरूप हमारा क्या था। जब हमें वो स्मृति रहेगी तभी हम हमारे इस पुराने अदर मध्य के संस्कार जो हमारे द्वापर कलयुग के संस्कारों से हम परिवर्तन हो सकते हैं। फिर है श्रीमत, क्योंकि हम मनमत और परमत के आधार से ही तो यहां पहुंच गए हैं ना। मनमत और परमत को श्रीमत में साथ मिक्स किया तभी तो हम ये बन गए, आज साधारण मनुष्य बन गए। तो मन तो जब तक जब हम श्रीमत पर कदम रखकर चलेंगे, श्रीमत के कदम पर कदम रखेंगे तभी हमारे संस्कारों का परिवर्तन हो सकता है। इसलिए देखो देवताओं का क्या होता है, देवता को एक एक कर्मेंद्रिय की कह कहते हैं, नयन कमल, मुख कमल, हस्त कमल, चरण कमल कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कर्म किए, हमने यही समित अनुसार कर्म किए ना। कर्म करते भी हम कर्मेंद्रियों के प्रभाव से न्यारे रहेंगे तभी तो हमारे, इसलिए हमारा गायन है ना, एक एक कर्मेंद्रियों को भी हमारा नयन कमल कहते हैं ना, हस्त कमल, क्योंकि हम कर्मेंद्रियों के प्रभाव से न्यारे रहकर श्रीमत पर कर्म करते हैं, श्रीमत के अनुसार श्रीमत को फॉलो करते हैं कदम कदम पर, तभी हमारी श्रेष्ठ संस्कार बनते हैं। फिर हमें यह निश्चय हो जाए एक बार कि हमारा लक्ष्य क्या है, कि हमें देवी देवता बनना ही है, सतयुगी दुनिया में हमें बादशाही लेनी ही है। जब हमारा ये लक्ष्य पक्का होगा तभी हम हमारा परिवर्तन कर सकते हैं। बाकी सतयुग में जाना है लेकिन उच्च पद लेना है वो भी तो हमारे होना चाहिए लक्ष्य। बाकी सतयुग में दासी भी जाएंगे, नौकर चाकर भी जाएंगे, तो हमारा लक्ष्य क्या है। अगर लक्ष्य ऊंचा होगा तो ही हमारा परिवर्तन उस आधार से होगा, तभी हम श्रीमत पर चल सकेंगे, तभी हम हमारा परिवर्तन अच्छी तरह से कर सकेंगे। जब तक हम महसूस नहीं करेंगे तब तक परिवर्तन भी संभव नहीं है। तो लक्ष्य हमारा अगर होगा कि हमें संपूर्ण बाप समान वर्तमान फरिश्ता बनना है, ब्राह्मण सो देवता, देवता सो फरिश्ता, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, अगर ये लक्ष्य हमारा हमारे माइंड में निश्चित है, पक्का है, तभी हमारा परिवर्तन संभव है पुराने संस्कारों से। फिर है हम स्वपरिवर्तन, क्योंकि हमारा स्लोगन भी है ना कि स्वपरिवर्तन और संस्कार परिवर्तन से ही संसार परिवर्तन और विश्व परिवर्तन होगा। तो हम पूरे परिवर्तन का आधार कौन है, खाली हमारे परिवर्तन का नहीं लेकिन पूरे संसार के परिवर्तन का आधार हम है। बाबा कहें आप आधार मूर्त तो उद्धार मूर्त हो। कल्पवृक्ष जड़ों में किसको दिखाया चित्र में, हमें तो रखा है ना बाबा ने। तो हम ही जब परिवर्तन नहीं करेंगे तो पूरे दुनिया को कैसे परिवर्तन करने पाएंगे। तो हम स्वपरिवर्तन और संस्कार परिवर्तन का लक्ष्य रखेंगे तो ये माइंड में रखना है, तब हम उद्धार मूर्त हैं, आधार मूर्त हैं, तभी हम हमारा परिवर्तन कर सकेंगे। और एक और बात है कि हम बाबा को फॉलो करें, फॉलो फादर। बाबा ने कभी ऐसा नहीं कहा है कि फॉलो ब्रदर सिस्टर्स, फॉलो फादर, क्योंकि बाबा ने अपना परिवर्तन किस आधार से किया, बाबा को वैराग्य किस एक ही बात से आ गया था ना, कि बाबा को दो साक्षात्कार हुए थे, एक पुरानी दुनिया का महाविनाश और दूसरा था नई दुनिया आने वाली है। बाबा को इस दो विजन से ही उन्होंने पूरा वैराग्य उनके जीवन में आ गया था। बाबा को निश्चय हो गया था कि ये पुरानी दुनिया वो खत्म होने वाली है और सती की दुनिया आने वाली, ये दो बातों पर बाबा ने पूरा जीवन बाबा को समर्पित कर दिया था। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जीते जी मरना है, जीते जी मरना और मरजीवा बनना। बाबा कहते हैं जीते जी मरना अर्थात पूरी दुनिया हमारे लिए मरी पड़ी है, जीते जी मर जाना है तभी हम संस्कार का परिवर्तन कर सकते, और मरजीवा बनना। ब्राह्मण जन्म है ना हमारा, अलौकिक जन्म है, नया जन्म है, दूसरा जन्म है, दुर्लभ जन्म है। कहते ना बाबा ब्राह्मणों को द्विज भी कहते, द्विज दूसरा जन्म है हमारा। तो ब्राह्मण जन्म मीन्स नया जन्म माना हमारे पुराने जन्मों की सभी स्मृति हमें कुछ भी याद नहीं है, है याद अगले जन्म में हम क्या थे हमें पता है नहीं है। तो पुराने जन्म बीती सो बीती कर दो, पास को पास कर देना है। तो ब्राह्मण जन्म नया जन्म है, अलौकिक जन्म है, उस जन्म की स्मृति में रहेंगे तो भी हम संस्कार का परिवर्तन कर पाएंगे, क्योंकि नया जन्म है, नई दुनिया में जाना है। कल ही मुरली में था ना, नया ज्ञान है, नई बात है, नई दुनिया है, तो हमारे संस्कार भी नए है, पुराने संस्कारों उसको हमें त्याग करना है, उसके वैराग्य करना है। जब हम ये स्मृति रहेगी हम मर जीवा, लेकिन फिर भी हम क्या बार बार जिंदे हो जाते हैं ना, हो जाते हैं ना, कि मर जीवा बन के कितनी बार जिंदा होते हैं, डेली मरते हैं, डेली जिंदा होते हैं। कितना हम ब्राह्मण का संस्कार क्या है, हम बार बार शूद्रपन में आ जाते हैं, तो आप कैसा परिवर्तन कर पाएंगे? तो हमें कितना महीन हमारे पास चेकिंग रखना होगा, चेकिंग और चेंज, चेकिंग और चेंज, वही हमारा संस्कार को परिवर्तन करके आधार है। चेकिंग और चेंज, चेक और चेंज, चेक और चेंज। चेकर बनने वाले ही मेकर बन सकते हैं, बाबा कहते एक आके कि चेकर बनो तो ही मेकर, नई दुनिया के मेकर बनोगे। लेकिन हम दूसरों की चेकिंग करते हैं ना, दूसरों को देखने का चश्मा पहन रखा है हमने। बाबा कहते हैं ना कि हमारी दूर की दृष्टि बहुत शार्प है, अच्छी है, नजदीक की दृष्टि कमजोर है। तो बाबा कहते हैं आप विशेषता का चश्मा पहन लो तो सबकी विशेषता ही दिखाई देगी, और विशेषता को देखेंगे तो हम वो विशेषता को अपने अंदर भर जाएंगे, तो वो भी हमारे संस्कार रिफाइन होते जाएंगे। लेकिन हम करते हैं उसके विपरीत, शूद्र बन जाते हैं बार बार। तो मर्जी व जन्म को भी याद रखना है। लेकिन इस सब परिवर्तन हम चाहते हैं, हमें पता भी है हमें परिवर्तन करना है, कदम कदम पर हमारा परिवर्तन होना चाहिए, हर बात पर चेकिंग और चेंज, चेकिंग और चेंज, चेकिंग और चेंज। लेकिन परिवर्तन भी हम कैसे करें? परिवर्तन का आधार क्या है? मुरली, ज्ञान। ज्ञान है वही परिवर्तन का आधार है। और ज्ञान के बिना, ज्ञान को धारण किए बिना परिवर्तन संभव नहीं है। तो ज्ञान है, ज्ञान का सोर्स क्या है? मुरली है। सभी चीजों का सोर्स मुरली ही है ना, बाबा का ज्ञान है वही सब कुछ हमें सिखाता है। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, कमाई का साधन है ये ज्ञान है। लेकिन ज्ञान के हमारा एक संस्कार है ना, आत्मा का एक गुण है ज्ञान स्वरूप। लेकिन हम ज्ञान को सुनते तो है, लेकिन धारण कितना करते हैं, अप्लाई कितना करते हैं? नहीं करते हैं, इसलिए तो परिवर्तन हुआ नहीं। लेकिन बाबा 83 सालों से मुरलियां चला रहे हैं बाबा, फिर भी हम बोलते हैं ना 50 साल से ज्ञान में है, कोई कहते 80 सालों से ज्ञान में है, 30 सालों से। लेकिन ज्ञान हम में कितने सालों से है वो हमें देखना है, तो ही परिवर्तन संभव है। तो ज्ञान का आधार है मुरली। बाबा कहते हैं मुरली का सत्य ज्ञान, सत्य बाप का ये सत्य ज्ञान है। और कहते हैं ट्रूथ इज लाइक एरो, सत्य है वो एक तीर के समान होता है। तो मुरली का एक एक शब्द, एक एक महावाक्य हमें तीर की तरह लगना चाहिए, तो ही परिवर्तन संभव है। लेकिन हमें लगता है, हम अपनी चेक करें। बाबा कहते मुरली का एक एक सेंटेंस से परिवर्तन के लिए एक युक्ति है, एक एक सेंटेंस, एक एक शब्द, एक एक वाक्य, महावाक्य है ना, महा ये है, ग्रेट वर्जन से बाबा के महावाक्य, रत्न है ना, 1 लाख रत्न से भी ज्यादा अमूल्य है ये रत्न। तो मुरली को जब तक हम सुनने लगे सुन लिया, लेकिन जब तक सुन के धारण नहीं किया तब तक परिवर्तन संभव नहीं है। मुरली को सुनना, धारण करना और प्रैक्टिकल में लाना तभी परिवर्तन है। और जब तक हम ये मानकर नहीं सुनते हैं कि ये मुरली का एक एक शब्द बाबा ने मेरे ही लिए कहा है, मेरे लिए ही है, तभी तक भी परिवर्तन संभव नहीं है। तो मुरली को धारण करें, परिवर्तन करने का अभ्यास करें। नहीं, परिवर्तन करना ही है, अभी तो ये रखना है कि मुझे ही परिवर्तन होना, तभी परिवर्तन संभव है। मुरली का एक एक शब्द हमें परिवर्तन के लिए युक्ति है, और युक्ति ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाती है। ये परिवर्तन की युक्ति मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाएगी, वही तो हमारा लक्ष्य है ना, कि देवी संस्कार धारण करने हमें देवता बनना है। लेकिन देवता में भी कौन सा पद चाहिए वो हमारे ऊपर है। तो मुरली है वही ज्ञान का आधार है ना, राजा महाराजा बनना है ना, लक्ष्य तो ऊंचा रखना है, तो ही प्राप्ति रखे, तो ही तो लक्ष्य जैसा होगे वही लक्षण अभी तो धारण करेंगे ना, वही से अनुसार पुरुषार्थ करेंगे ना। तो मुरली पर, मुरली ही ज्ञान का आधार है ना। लेकिन हम सबसे कम इंपोर्टेंस मुरली को देते हैं। सुबह क्लास में सुन लिया, फिर क्लासेस सुनते हैं, वो सुनते हैं, गाने सुनते हैं, लेकिन मुरली जानकी दादी कहती है ना, जानकी दादी बहुत पीछे आई थी शायद यज्ञ में, उनके पहले जो आगे थे, तो बाबा को उससे एक बार पूछा कि बाबा मैं पुरुषार्थ में कैसे आगे बढ़ूंगी, मैं तो बहुत पीछे आई हूं इन सबसे। तो बाबा ने उनको कहा कि 8 बार मुरली पढ़। बाबा दादी 12 या 16 बार मुरली पढ़ती थी तो कहां पहुंच गई, खाली मुरली का दास है। तब तो मुरली आई थी ना, जब साकार बाबा थे तब मुरली और योग दो ही चीज थी, तो भी वो कहां पहुंच गए, यज्ञ के आधार स्तंभ बन गए हैं ना आज, वो पूरे विश्व में उनकी महिमा है। तो इतना इंपोर्टेंस हम क्या देते हैं मुरली को देते हैं, क्योंकि मुरली में ही देखो पूरा हमारा, मुरली किस से बनी है, 5 शब्दों की संधि से बनी है, म उ र ल ई। तो माँ से मुरली हमें क्या मंदिर लायक बनाती है ना, जो हमारा पूजनीय स्वरूप है किसने बनाया ऐसा, इस ज्ञान के आधार से ही तो हम ऐसे बने ना। मुरली ही हमें महान बनाती है, मुरली ही हमें मन मना भव मामे कम याद कर का मंत्र देती है जो हमारे सारे ज्ञान का सार है, मुरली ही हमें माया जीत बना देती है, मन जीत जगत जीत बना देती है, मुरली ही महामंत्र देती है मन मना भव का। फिर र मुरली ही राजयोग की शिक्षा मुरली से ही तो मिली ना हमें, और कोई स्रोत है मुरली के सिवा राजयोग का, और राजयोग से ही हमारा लक्ष्य प्राप्त करते, राजाओं का राजा बनते हैं, राजा ही पद की प्राप्ति होती है। फिर ल ल माना हमारा लक्ष्य है वो मुरली से तो मिलता है ना, जो लक्ष्य हमारा है लक्ष्मी नारायण जैसा बनना और श्रेष्ठ पद की प्राप्ति करना, वो हमारे मुरली से ही तो मिलता है, एक लॉटरी है हमारे लिए मुरली। फिर है ऊ रह गया ऊ माना उच्च पद की प्राप्ति जो हमें भविष्य में चाहिए वो मुरली से तो मिलेगी, उड़ना सिखाती उमंग उत्साह दिलाती है, तो उमंग उत्साह दिलाती है, उल्लास में रहना सिखाती है, सदा खुश रहना सिखाती है। और लास्ट में है ई, ई माना ईश्वर से सबसे समीप कौन ले जाता है हमें, बाबा से, मुरली इष्ट देव बनाती है, जो हमारा द्वापर से हमारा गायन है इष्ट देव हमें पूजनीय बनाती है, इष्ट देव अनेक भक्त आत्माओं के हम इष्ट देव हैं, तो मुरली से ही बनते हैं ना। ईश्वरीय खजानों की प्राप्ति कराती है, ईश्वर से समीप ले आती है, ईश्वर समान बनाती है, तो ये मुरली से ही तो हमें सब प्राप्ति हो रही है, लेकिन हम प्राप्ति के साधन कहां ढूंढते हैं। तो एक मुरली ही सारे परिवर्तन, ज्ञान का आधार मुरली है और परिवर्तन का आधार ज्ञान है ना। तो इस मुरली को हम इतना इंपोर्टेंस दे कि जितना समय मिले मुरली को बार बार रिवाइज करें, उससे जितनी बार मुरली पढ़ेंगे कुछ नया पॉइंट मिलेगा, एक बार पढ़ी तो सब कुछ थोड़ा याद रह जाता है, जितनी बार मुरली पढ़ेंगे कुछ नई नई पॉइंट हमारे लिए पुरुषार्थ के लिए काम आए ऐसे मिलती ही है। और मुरली ही हमारे पुरुषार्थ, मेरे पर्सनल अनुभव है, साकार वाणी और अव्यक्त वाणी, बाबा कहते ना साकार मुरली और अव्यक्त वाणी में क्या अंतर है, दोनों बाबा की चलाई हुई है, लेकिन साकार वाणी बाबा कहते हम कलयुग में आज हम कोड़ी तुल्य बन गए हैं, पत्थर जैसे बन गए, लोहे जैसे बन गए हैं। तो साकार वाणी से सुनते थे कि हम मुरली हीरा तो बन गए, पत्थर से हीरा बनाते हैं बाबा, लेकिन हीरा भी कैसा होता है, अलग अलग चमक होती है ना हीरे के भी, लेकिन अव्यक्त वाणी से हमें तराशने की जो विधिया मिलती है, हीरे को पुलिस करना हो तो अव्यक्त वाणी से, चमकदार बनाना है तो अव्यक्त वाणी से, दोनों वाणी में बहुत अंतर है, लेकिन दोनों वाणियों का चिंतन करें हम तो और कुछ पुरुषार्थ का एक सबसे श्रेष्ठ साधन मुरली ही है, लेकिन हम जितना अपनाए अगर धारण करे तो। ओम शांति।
मेरे कर भूल गया मैं जब खुद को, देह के भान में आकर मैंने खो दिया स्वर्णिम सुख को, खो दिया स्वर्णिम सुख को, मैं देह से न्यारा से न्यारा हूं,
प्यारा हूँ, मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का